सायंकालीन सत्संग में आप सबका सादर स्वागत है। बृहद भागवतामृत के माध्यम से सत्संग प्राप्त करने के लिए हमें एक बहुत सुंदर सा अवसर प्राप्त हुआ है। 3 दिनों के लिए ये सत्र जारी रहेगा और समय है 8 से 9:30 तक। हमारे वैष्णव संप्रदाय में भक्ति को बढ़ाने के लिए अनेक अनेक ग्रंथ हैं और भक्ति की पुष्टि के लिए अनेक सैद्धांतिक शास्त्रीय अनुशीलन भी है, पर ये बृहद भागवतामृतम एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम भक्ति के चरम एवं परम सिद्धांतों को जानने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये भागवतामृतम कोई दूसरे ग्रंथ नहीं है, यह श्री चैतन्य महाप्रभु के परम श्रेष्ठ कृपा पात्र श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित है। श्रीमद् भागवतम परंपरा के अनुसार हमें प्राप्त है। श्री नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने सुपुत्र भक्ति के प्रचारक श्री नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास को दिया, व्यास ने इस भागवत ग्रंथ को विस्तार किया। वैसे चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित है, नारद भक्ति सूत्र नारद जी के द्वारा, परंतु ये बृहद भागवतामृतम ग्रंथ, ये प्राचीन काल में कहीं लिखित आकर में नहीं था। सनातन गोस्वामी जब वंदना करते हैं 11 श्लोक में इस ग्रंथ में वंदना करते हैं, आखिरी श्लोक में उनका कहना है इसमें जो भी तथ्य है ये सब अनुभव से लिखा हुआ है। ये इस ग्रंथ की विशिष्टता है, इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य यही है, ये अनुभूति सिद्ध है, अनुभूति से ये पुस्तक लिखी गई है, जो उन्होंने अनुभव किया वो दिया है। परंतु अनुभव कैसे किया, अंतिम श्लोक में उन्होंने उनका कहना है अनुभूति तब हुई जब उन्होंने चैतन्य का ध्यान किया। प्रातःकालीन सत्र में जब चित्त की बात आएगी तो जब चर्चा होगी कि चित्त के जो अधिष्ठाता देव है उनको वासुदेव कहते हैं, उन्हीं का नाम है चैतन्य, चित्त में जो रहता है उनको चैतन्य कहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद ने श्री वासुदेव पर ध्यान किया और ध्यान का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो चीज उनको अनुभव में आनी थी वो सारे उनके मानस पटल में बातें आ गई। भक्ति शास्त्र अनंत है, उनमें से संग्रह करना बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु जैसा कि हम लोग भागवत के प्रारंभ में पढ़ते हैं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। इस कथन का आधार यही है कि जो गूंगा व्यक्ति है वो श्रीहरि की कृपा से बोल सकता है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि उन प्रभु की कृपा से हमको सारे भक्ति ग्रंथों का सार हमारे चित्त में प्रकट होने लगा। यद्यपि उन्होंने ऐसा गर्व नहीं किया कि मैंने इस ग्रंथ की रचना करी है, इसलिए उन्होंने कहा भगवत भक्ति शास्त्राणाम अयम सारस्य संग्रह। ये संग्रह शब्द से उनका अभिमान निरस्त होता है। उनका कहना है कि मैंने ये शास्त्र की रचना नहीं करी, मैंने ये शास्त्र को भिन्न भिन्न भक्ति शास्त्रों से संग्रह मात्र किया है। संग्रह कैसे, अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत् प्रिय रूपता। चैतन्य देवे चित्त के अधिष्ठाता देव चैतन्य वासुदेव के कृपा से हमें यह प्राप्त हो गया है। सबसे पहले उनका यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यदि हम मन को श्रीहरि के रूप गुण लीला में केंद्रित करते हैं तो दिव्याति दिव्य अनुभूतियां हमें प्राप्त होती रहती है। जो हमें अध्ययन आदि से प्राप्त नहीं हो सकता, ये इस ग्रंथ का पहला सिद्धांत है। अनुभूतस्य चैतन्य देवे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अथवा वासुदेव की कृपा से हमें ये ग्रंथ को संकलन करने में सहायता मिले अथवा हम कर सके, ये इस ग्रंथ की विशिष्टता है। इसमें प्रश्न नहीं किया जा सकता कि आपको ये ग्रंथ कैसे मिला, इसकी प्रामाणिकता क्या है, ये प्रश्न इस ग्रंथ में नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ये हमारी अनुभूति है। और आप देखेंगे आगे चल के जितने जितने चरित्र आए हैं वो हमारी बुद्धि से बाहर है, हम उनको एक साथ मिला नहीं सकते। कितने कितने पुराणों का प्रमाण है, कितनी कितनी अजीब अजीब घटनाएं हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो उस शास्त्र समूह को सनातन गोस्वामी ने इसे छोटे से ग्रंथ में एकत्रित किया है और इस ग्रंथ का नाम रखा गया बृहद भागवतामृतम। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न उठेगा, जब भागवत है सब कुछ, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, फिर बृहद भागवतामृतम कहने की क्या आवश्यकता थी, अथवा करने की आवश्यकता क्या थी? क्या जरूरी आ गया हमको बृहद भागवतामृत की रचना करनी पड़ी? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बृहद भागवतामृतम भागवत का सार है। बृहद भागवतामृतम भागवत का सार है। फिर प्रश्न उठेगा, जब भागवत ही सारे ग्रंथों का सार है, फिर भागवत का सार क्या है? निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसम आलयम मुहुरो रसिका भूमि भावका। रसिक भावक भक्तों के लिए ये कहा गया है, ये निगम कल्प तरु का फल है। फल माने सार स्वरूप, यहाँ फल का अर्थ होता है सार स्वरूप। तो भागवत अगर संपूर्ण शास्त्र का सार स्वरूप है, फिर ये कौन सा सार स्वरूप है, एक प्रश्न खड़ा होता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवत का सार है भक्ति, और भक्ति पांच रूप से की जा सकती है, इसलिए भूमि भावका। भावुका शब्द का अर्थ होता है जिसमें भाव है उनको भावुका कहते हैं, भाव। तो पंचभावा, पांच प्रकार के भाव है। सबसे निकृष्ट भाव का नाम है शांत भाव, शांत। श्रीहरि की भक्ति तो करते हैं पर शांत रूप में करते हैं, जैसे छत्र पादुका आदि, आसन बिछौना आदि, ये भी सेवक है परंतु शांत है। पेड़ पौधे पहाड़ जो शांत है। उसके पश्चात दास्य भाव है, सेवा की भावना है, सेवा करता है। फिर तदुपरांत साख्य भाव है, सखा भाव में विश्वास प्रधान होता है। विश्वास, विश्वास का अर्थ जहां पे सखा की टीका की गई है वहां पर आचार्यों ने लिखा है विश्वास। विश्वास का क्या अर्थ है? क्या दास भाव में विश्वास नहीं है? है विश्वास, परंतु सख्य रति में जो विश्वास है वो ना तो दास में है ना तो शांत में है। क्या विश्वास? ब्रज में जब गोपालक क्रीड़ा करते हैं वृंदावन के उस सघन वन में, तो कुछ कुछ बालक वो पेड़ पर चढ़ जाते थे, टेंटी पीलू बेर फल होते हैं वृंदावन में, छोटे छोटे फल कभी कभी आम, तो ऊपर जो चढ़ा हुआ बालक वो खाता है उस फल को, चाखता है, चाख करके अगर उसमें मिठास है, मीठा फल है, वो नीचे फेंकता है, कन्हैया नीचे होता है, वो कहता है धरे भाई कान्हा ये फल था अति मीठा, भैया कान्हा ये फल में फेंक रहा हो तो पकड़ ले, पकड़ कान्हा पकड़, इस फल में बहुत मिठास है। तो कन्हैया उस फल को धरता है, पकड़ता है, इसी का नाम है विश्वास। दास्य भाव का भक्त इतना विश्वास के साथ नहीं कह सकता, उसमें संभ्रम रहता है, हाँ जी ये चीज मैं आपके लिए लाया हूं कृपया इसे स्वीकार कीजिए, ये विश्वास नहीं है। परंतु वो बालक कहता है धर्म भाई का भाई फल अति मिष्ट, बहुत मीठा है, इसका नाम है विश्वास। पति पत्नी में जो संबंध है वो साख्य रस के अंतर्गत है, विश्वास है, विश्वास है। एक बार एक घटना घटी थी, एक महिला किसी दुकान में कपड़े खरीदने आई है और उनकी आदत होती है बहुत कुछ छांटती हैं। दुकानदार था थोड़ा टेढ़ा मिजाज का था, उसने क्या है तुमको लेना ही नहीं है, केवल छांटने आई है क्या? और वो बहुत प्रतिष्ठित परिवार की महिला थी, तो उनके दिल में एक बात चुभ गई, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मोही से बस कॉल किया अपने पति के पास, तो इतना विश्वास था उनके पति देव आए, तो उन्होंने कहा पूरी दुकान हमें खरीदनी है। दुकानदार से कहा कितनी मोटी रकम तुम्हें चाहिए, वो भी नहीं समझता था कि ये बहुत ही मतलब इतनी हठ करने वाली है, तो हठ पकड़ लिया इसने, हमें पूरी दुकान चाहिए। पति ने कहा पूछ लो उसको कितनी मोटी रकम चाहिए, उसने कहा बस इतनी लागत चाहिए, लो हटो यहां से। वो तो ऐसे ही फापर ही रह गया, वो सोचने तक नहीं मिला उसको क्या करना था। ये घटना है, कितना सख्य है विश्वास, साक्षरस का मूल है। उसके पश्चात वात्सल्य आता है, वात्सल्य में दबाव, खाना नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा, ले खा ले, मां डांटती है यही बैठ जा चूल्हे पे अंगीठी पे दूध बिठा रखा है उतार के आती हूं, जब तक नहीं आती हूं तब तक यहीं बैठना, दबाव है। और श्रृंगार रस में सब कुछ है, सब है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा कि जितने रस है शांत से लेकर के श्रृंगार तक, श्रेष्ठ रस है श्रृंगार रस, आदि रस, ये अमृतम है। यद्यपि शांत दास साक्ष वात्सल्य ये अपने आप में श्रेष्ठ है, हनुमान जी कभी श्रृंगार रस प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करते, उद्धव जी की इच्छा कभी नहीं रहती, अर्जुन को ब्रज में अर्जुन बनने की इच्छा नहीं रहती, श्रीदाम सुबल स्तोक कृष्ण भद्र ये बनने की इच्छा नहीं रहती, सुग्रीव जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहना चाहते हैं, फिर भी इनमें तारतम्य है। यदि तटस्थ होकर के विचार किया जाए तो श्रृंगार रस आदि रस ही श्रेष्ठ रस माना जाता है। इसीलिए और उस श्रृंगार रस में भी दो प्रकार है, वो एक तो परकीय और एक शोकी। तो परकीय भाव से विधि रहित होकर के श्री कृष्ण से निर्मल निश्चल प्रेम करना, यही अमृत है। इसी अमृत को उजागर करने के लिए भागवत रूपी क्षीर सागर से इस अमृत को निकाला गया है, इसलिए इसका नाम हुआ बृहत भागवत अमृतम। भागवत रूपी क्षीर सागर से ये आदिरस श्रृंगार रस रूपी अमृत निकाला गया है। ग्रंथ की महिमा है बृहत भागवत अमृतम, दो खंडों में है। प्रथम खंड का नाम है कृपा सार निर्णय अथवा पात्रता का निर्णय, पात्र परिचय। दूसरा है गोलक महात्म्य। यदि पात्र प्रबल है तो गोलोक उसके हाथ में है, यदि पात्र अपात्र है तो गोलोक में रहकर भी पूतना बन सकता है, तृणावर्त बन सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, क्षमा कीजिए, सनातन गोस्वामी ने सबसे पहले पात्रता का निर्णय किया है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला प्रथम अध्याय में आता है, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। बोले दो भागवत है, एक भागवत है एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक तो भागवत का रस है जहां से रस का प्रभाव अविरत है, परंतु उस प्रभाव को धारण करने के लिए एक पात्र चाहिए। जिस प्रकार आग की पुड़िया को हम कपड़े की गोद बना करके धारण नहीं कर सकते, आग का गोला हो हम उसको झोले में रखना चाहेंगे, आग का गोला हम रख नहीं सकते, पारद को हम पचा नहीं सकते, सिंघिन का दूध हमसे पचेगा नहीं। वैसे ही जो दिव्याति दिव्य प्रेम है उसको सामान्य व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कल्पना तक करना ये गुनाह है, पाप है। उस प्रेम की पराकाष्ठा उस पात्र में ही संभव है। जैसे आग की पुड़िया किसी धातु पात्र में रह सकती है, उसी में ही आग धधक सकती है, परंतु कागज के पात्र में, कपड़े के पात्र में, कपड़े के झोले में आग नहीं रह सकती, वो उसको जला डालेगी। अगर वो दिव्याति दिव्य प्रेम यदा कदा हमें प्रकट हो जाए तो हमसे जीना संभव नहीं होगा। इसका प्रमाण साक्षात चैतन्य महाप्रभु है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को, हर भक्त जानता है। जब वो दिव्याति दिव्य प्रेम प्रकट होता था तो महाप्रभु के हाथ पैर लंबे हो जाते, एक एक हाथ उनका तीन चार हाथ हो जाता था, और इतना उताप पैदा होता था, वो पत्थर भी पिघलता था। ये सब वास्तविकता है, जैसे वस्तु है श्री कृष्ण वास्तव वस्तु, वैसे उनका प्रेम भी वास्तव है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये सब सेंटिमेंटली, ये सब काल्पनिक बातें लिखी गई है। इसी को प्रमाणित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अभी भी संकेत पूरी जगन्नाथ पूरी अलग में है। अष्ट सात्विक विकार पे जब वो चट्टान पर वो लेटते हैं तो उनके अंग का ताप इतना बढ़ जाता है वो पत्थर पिघल जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में भी आज उंगली का निशान है, चरणों का निशान आज भी है। इसलिए वो दिव्याति दिव्य प्रेम को धारण करना हम लोगों के लिए बहुत ही दुष्कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा धीरे धीरे करके साधना करनी होती है। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। सनातन गोस्वामी में पात्रता थी, उनकी इच्छा हुई हम शरीर त्याग कर दें। महाप्रभु ने कहा सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाए, कोटि देह क्षणयामी छाड़िते पाए। सनातन यदि शरीर पाप करने से हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती तो एक क्षण में हम 1 करोड़ शरीर छोड़ने में समर्थ है। तुम तो एक क्षण में एक शरीर भी नहीं छोड़ सकते। कोटि देह क्षणयामी छाड़िते पाए, देह त्यागे कृष्ण ना पाई पाइये भजने। देह त्याग में कृष्ण कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। भक्ति बिना कृष्ण कबू न है प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्याहिते न। भक्ति के बिना आपको प्रेम पात्र बनेगा ही नहीं, और प्रेम का पात्र नहीं बनेगा तो कृष्ण आने की कोई संभावना नहीं है। तो इन सिद्धांतों को प्रस्तुत करके हमें देने के लिए श्री सनातन गोस्वामी पाद ने बृहद भागवतामृत की रचना करी। इसलिए उन्होंने कहा पहले पात्रता बनाओ फिर गोलोक। गोलोक महात्म्य हम बाद में कहेंगे, पहले पात्रता। अतः उन्होंने इस पात्रता का परिचय देने के लिए इस प्रथम खंड को 7 भाग में विभाजित किया क्रम के अनुसार। पहला अध्याय का नाम है भौम। इसमें देखेंगे इसमें भी 2 पात्र है, ये भी भक्ति करते हैं, परंतु उनसे श्रेष्ठ स्वर्ग लोक के भक्त लोग हैं। भवों के बाद स्वर्ग। फिर तीसरे अध्याय में प्रपंचातीत श्री शिव की महिमा कही गई है। भौम में दो भक्त, एक ब्राह्मण की कथा और क्षत्रिय की कथा। दोनों भक्तों में से ब्राह्मण से वो क्षत्रिय राजा श्रेष्ठ है, ऐसा निर्णय किया गया है। प्रथम अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में सनातन गोस्वामी चर्चा करते हैं दिव्य अर्थात स्वर्ग रूप के बारे में। वहां पे दो भक्त हैं, एक श्री इंद्र और एक श्री ब्रह्मा जी। सार्वभौम अधिकारी है इंद्र और परमेष्ठ पद का अधिकारी है श्री ब्रह्मा जी। इन दोनों में भी भक्ति के भक्ति का तारतम्य है। आगे चल के प्रपंचाजित श्री शिव जी की महिमा, फिर आगे चल के भक्त प्रहलाद की कथा, फिर आगे चल के प्रिय हनुमान आदि की कथा, पांडव आदि की कथा, फिर आगे चल के प्रियतम श्री उद्धव आदि की कथा। उद्धव के प्रसंग में आप लोग देख सकते हो, श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आप जितने मुझे प्रिय हो ना तो उतना प्रिय मुझे मेरा पुत्र ब्रह्मा है, ना तो उतने मुझे प्रिय मेरी आत्मा शंभु है, ना श्री, ना तो मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी है, ना आत्मा, ना मैं अपने लिए भी उतना प्रिय नहीं हूं, हे उद्धव, जितना तुम मुझे प्रिय हो। प्रियतम का निर्णय किया गया। और अंतिम कड़ी, अंतिम अध्याय में सर्वोच्च प्रियतम पूर्ण कृपा सिद्ध पात्र श्री ब्रजांगना को माना गया है। आप लोग देखोगे ये भक्ति का तारतम्य क्या है, धीरे धीरे आप सुनते चलेंगे तो ये आपको अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमारे वैष्णव जगत में इस बृहद भागवत व्रत को सर्वोच्च सैद्धांतिक व्रत माना जाता है। रसयुक्त एवं सिद्धांत से पुष्ट, रस पुष्ट सिद्धांत पुष्ट, ये ग्रंथ की यही विशेषता है। और इसके पात्र कौन है, ग्रंथ का परिचय मिल गया, बृहद भागवतम व्रतम क्यों हुआ, इसमें कितने अध्याय है, तारतम्य क्या है, और इसका पात्र निर्णय देखिएगा। कोई भी ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ की रचना की जाती है उसमें अनुबंध चतुष्टय होता है। अनुबंध चतुष्टय शब्द का अर्थ होता है संबंध, अविधेय, प्रयोजन एवं अधिकारी। उस ग्रंथ के कोई अधिकारी जरूर होना चाहिए, सबके लिए सब चीज नहीं है। सराफा बजा किसी गरीब व्यक्ति के लिए नहीं है, हीरा जवाहरात जहां पे मिलता है वहां पर रिक्शा वाला जाएगा क्या जवाहरात लेगा, जहां पे एक कण करोड़ों में बिकता है। हाँ, ये सब जानते हीरे वाले बैठे, हमें उतना अनुभव नहीं है। तो पात्रता अधिकारी चाहिए। संबंध, संबंध माने प्रतिपाद्य विषय, इस ग्रंथ में हम क्या देना चाहते हैं उसको कहते हैं संबंध अथवा प्रतिपाद्य विषय। अविधेय, उस प्रतिपाद्य विषय को हम कैसे पाएंगे, क्या साधन है। अविधेय माने अविधेय दियते इति अविधेय, जो उठा करके आपको सामने रख दे। ये संस्कृत शब्दों की विशेषता है, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। अविधेय, अविधेय आधीयते इति अविधेय, अविध माने सामने, इसलिए भक्ति को अविधेय माना गया। ये भक्ति माँ जो है हमको उठा करके पिता के सामने रख देती है, ये आपका लड़का, ये आपका छोरा है, इसीलिए उसका नाम है अविधेय। और प्रयोजन, ठीक है उस वस्तु को हम प्राप्त करेंगे तो हमारा लाभ क्या हुआ, प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सनातन गोस्वामी का क्या कहना है, अधिकारी कौन है, अधिकारी इसके लिए उन्होंने लिखा है कि सामान्य कोटि का वैष्णव नहीं है। वैष्णव तो चाहिए, श्रवण तो वैष्णव, परंतु सामान्य वैष्णव नहीं है। सामान्य शब्द का क्या अर्थ है? यदि भक्ति करने के लिए वो गंभीर नहीं है तो वो इस ग्रंथ का अधिकारी नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यदि भक्ति करने के लिए वो वैष्णव गंभीर नहीं है तो वो इस ग्रंथ का अधिकारी नहीं है। प्रश्न उठेगा, गंभीर क्या है? हर भक्त हमारे संस्था के जानते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा गंभीर विश्वरियस। क्या गंभीरता है? गंभीरता का क्या अर्थ है? चुप्पी रहना, किसी से बातें नहीं करना, हमेशा माथा झुका करके चलना, नहीं। गंभीरता का अर्थ होता है, इसको दिल में बिठाइए, गंभीरता का अर्थ होता है शब्द बाधाओं के आने पर भी जो अपने लक्ष्य पर से च्युत नहीं हो जाता वो गंभीर माना जाता है। बाधाएं तो आई, पदम पदम जब विपदाम, बाधाओं की यहां कमी नहीं है। ये तो संसार बाधा युक्त है, तरह तरह की समस्याएं हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि सागर की सारी लहरें थम जाएगी और हम तैरना सीख लेंगे, वो उसकी बेवकूफी, उसकी मूर्खता साबित हो जाएगी। नहीं, पदम पदम यद विपदाम, इस विपद संकुल सागर में रहते हुए भी जो अपने मंजिल तक जाने के लिए दृढ़ संकल्प है वो वैष्णव इस ग्रंथ का अधिकारी। इसीलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं सर्वंतु वैष्णव। ये गंभीरता, गंभीरता की ये सबसे उच्चतम परिभाषा यही है। लक्ष्य च्युत ना हो जाओ, भले ही कितनी चीजें आएंगे, कितने संबंधी आएंगे जाएंगे, कितनी सुविधाएं आएगी जाएगी, भक्ति करते समय ये प्रतिष्ठा, सुविधाएं, आदर, ये भी सब बाधाएं हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तरह तरह की सुविधाएं, परंतु लक्ष्य भ्रष्ट होना ये गंभीरता नहीं है। श्री नारद जी सतत हमें कहते हैं शरम तु जीवन परमेव लक्ष्यम, परमेव लक्ष्यम। आहो दश प्राणम धर्म धर्म चक्रे भीमानम रखिनम तु जीवम धनुर्हितस्य प्रणवम पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। सप्तम स्कंद भागवत बोले जीव जो है यही शर है, इनको उस लक्ष्य, वो श्री कृष्ण के शरणागत तक पहुंचा देना, बस यही यही शिकारी है, शिकार करना चाहिए। दक्ष शिकारी अपना लक्ष्य को हासिल करता है। और वृंदावन के हम शिकारी, भक्त नहीं है वो, वृंदावन के वन का बहलिया है वो बहलिया श्री कृष्ण मृग को ढूंढता है, वो कहां है मृग, उसी के चरण को पकड़ता है, इसी का नाम है गंभीरता। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं जो वैष्णव अपने लक्ष्य के लिए गंभीर है वो इस ग्रंथ के अधिकारी है। संबंध क्या है? संबंध है श्री हरि एवं उनके चरणों के उपासक भावुक भक्तों का भाव चरित्र, ये प्रतिपाद्य विषय। अभिधेय क्या है? भक्ति, उनके चरण कमल की पाद प्राप्ति का साधन। प्रयोजन क्या है? विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। विशुद्ध प्रेम का क्या अर्थ है? प्रेम तो सभी करेंगे, आगे चल के देखेंगे। विशुद्ध प्रेम का अर्थ होता है जिसमें जरा सी भी स्वसुख वासना नहीं है, स्वसुख रहितम विशुद्धत्व, जरा सा भी कोई गंदगी नहीं है, अपने सुख का कामना तो है ही नहीं। इसलिए नारद जी ने जब सूत्र बनाया यथा ब्रजगोपी का नाम, भक्ति क्या है यथा ब्रजगोपी का नाम, तदर्पिता खिलचारिता तद विरहे परम व्याकुलता इति नारद। सारी क्रियाएं खाते पीते सोते जगते उठते सारी क्रियाएं, और वो क्रियाएं तो उस समय सहज भाव का होता है, उस क्रिया के लिए उस समय प्रभु प्रयास करना नहीं पड़ता। कृष्ण कर्णाव्रत में बिल्वमंगल ठाकुर प्रमाण देते हैं, विक्रे तो कामा खिल गो प्रकन्या मुरारी पादार पिता चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवसाद पोचा गोविंद दामो धर्माधवेति। विकृतु कामाखिल उपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी ने जिनके चित्त वृत्ति को हरण कर ली है, वो ब्रज की गोपांगनाएं जब दधी बेचने जाती थी तो वो दधी लोरी दूध लेओरी ये नहीं कह पाती थी, वो क्या कहती थी, अरे कोई माधव ले लोरी, कोई गोविंद गोपाल को ले लो, इतना मोह हो गया था, मोहावेश मोह का आवेश हो गया था। जैसे किसी व्यक्ति में भूत का आवेश हो जाए, तो मुरारी का आवेश हो गया था, मोहावसाद अगोचर बेचती थी। किसको बेचती थी, वास्तव में वो अधिकारी है, कृष्ण को बेचने का परम अधिकारी सामर्थ्यशाली ने वो थी, वो दे सकती थी कृष्ण से, तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार शपथ या छे, वास्तव में उनमें सामर्थ्य थी। लोग गोविंद को हम देते हैं लोग, इसी का नाम है समर्थार्थी, इसी का नाम है समर्थ, समर्थ है, रति कमजोर नहीं है, समर्थ है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को परम प्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ सेवक पार्षद श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी अनुभूति से इस पुस्तक में पुस्तक की रचना करी है, उनके अनुभूति सिद्ध ग्रंथ यह है, और उनका भाव है व्यक्ति इसका अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से उस भक्ति के रंग से रंगायित होता है, उनके मन में वही अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम उत्तमा भक्ति भक्ति उत्तमा, इसी की गंध इसी का भाव चढ़ जाता है, फिर वो श्रीहरि का पूर्ण कृपा पात्र ही बन जाता है। यही पात्रता देने के लिए ही कहा गया, यदि हमारे में पात्रता हो जाए तो चाहे हम वृंदावन में रहे, चाहे हम मुंबई में रहे, चाहे भारत के किसी प्रदेश में रहे, चाहे विश्व के किसी कोने में रहे, जहां रहेंगे वहीं प्रभु रहेंगे। यदि हमें पात्रता नहीं है तो जहां रहेंगे वहां हमें हरि का अनुभव नहीं होगा। पात्रता से ही वस्तु आ जाती है, इसलिए पात्रता बहुत आवश्यक है। आइए मंगलाचरण के साथ इस ग्रंथ के विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। 11 श्लोक में मंगलाचरण है और हम पूरे 11 श्लोक को नहीं कहेंगे, उसमें से एक श्लोक कहेंगे जो नाम महिमा को ज्ञापन करने वाला श्लोक है, उसी श्लोक के साथ हम इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। जयति जयति नामानंद रूपं मुरारे, जयति जयति नामानंद रूपं मुरारे,
जयति जयति नामानंद रूपं मुरारे,
विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम्। विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम्। कथमपि सकृदात्तम् मुक्तिदं प्राणिनाय परममृतमेकम् जीवनं भूषणं मे। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नाम की जय हो। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नाम की जय हो। जो वर्णाश्रम धर्म ध्यान एवं पूजादि के अनुष्ठानों में उत्पन्न होने वाली जतनों एवं दुखों से छुटकारा देने वाला है। किसी प्रकार एक बार भी उच्चारित होने पर यह श्री कृष्ण नाम प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। कैसे नाम की महिमा है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, ये एकमात्र परम अमृत स्वरूप है। श्री कृष्ण नाम ही मेरा जीवन और मेरा भूषण है। यही उनका आदर्श है। वैष्णव का क्या भूषण है। बहुत अधिक वस्त्र से वैष्णव की शोभा नहीं होती है। उनका भूषण है नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलो सखी तहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरे मिले एक पंथ दो काज। चित्तवृत्ति में हरि का निवास सदैव होता था। इसीलिए ब्रज गोपियां कुछ ना कुछ बहाना ढूंढा करती थी। वहां जाए काना मिलेगा, वहां चले जाए लाला मिलेगा, वहां चले जाए कहीं नंद नंदन तो नहीं मिल जाएगा, कहीं उस सरोवर के किनारे, कहीं साकरी खोर पर, कहीं उस निकुंज प्रसाद में, कहीं यमुना के पुलिन में, कहीं वृंदा विपिन में, कहीं गौर वन में वो ढूंढा करती थी। सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये नाम मेरा भूषण हो जाए, बस यही यही सार्थकता है। हम वैष्णवों के लिए सिद्धि क्या है। सिद्धि ही नाम है। सिद्धि की कोई दूसरी परिभाषा नहीं। जो कर्म जो करना चाहता है उसी में सरलता आ जाने वही उसकी सिद्धि है। ध्यान देना, सिद्धि कोई विचित्र चीज नहीं है। जो काम हम करते हैं उसमें सहजता वही उसकी सिद्धि है। दृष्टांत के रूप में कोई मदन वादक और शुरू शुरू में उंगलियां चलाता है तो उंगलियां जो सहज रीति से चल पड़ेगी वही उसकी सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ समझ लीजिएगा, कोई ऐसे मन में कोई ऐसा भाव पोषण ना करे, भ्रम में ना रहे कि सिद्धि क्या है। वैष्णव के लिए सिद्धि है। तुंडितांडविने रतिं वितनुते तुंडावले लवधये कर्ण क्रोड़ कड़म विनि घटयते कर्णार्बुदेभ्यास्त्रयाम चेत प्रांगण संगन विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृते नो जाने जनित किया अद्भुते कृष्णेति वर्णाद्वयि। रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि वो दो वर्ण में कितनी शक्ति है, उसने मुझे पागल बना दिया। कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तार बल जपिते जपिते मंत्र कोहिलो पागल। ये पागलपन ही सिद्धि है। सिद्धि कोई कोई ऐसे अद्भुत किस्म की चीज नहीं है कि हमको ये दे दे वो दे दे वो दे, नहीं। हम नाम ले रहे हैं 16 वाला, वो नाम हमारे रोम रोम में हमारी जिह्वा में अनवरत प्रकट हो जाए, यही सिद्धि है। यही सिद्धि है। जीवन दशा में चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। शौच क्रिया में गए थे, जिह्वा नहीं मानती थी, कृष्ण 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 कहती थी। महाप्रभु शौच क्रिया में से उठ के वो जिह्वा को ऐसे पकड़ करके आए बाहर। गोपाल छोटा सा बालक था, उसने देखा ये कैसा दृश्य है प्रभु। प्रभु ने कहा गोपाल ये जिह्वा तेरी बात नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, क्या हो गया? न जिह्वा को आप रोकना चाहते हैं तो कृष्ण मत ले, पर वो लेती रहती है, हम विवश हैं। गोपाल ने कहा प्रभु यही तो उचित है, यही तो चाहिए। यदि शौच क्रिया के समय प्राण पक्षी उड़ जाते हैं तो उस व्यक्ति की दशा क्या होगी? फिर भागवत असत्य हो जाएगी। एत आवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। अंत काल में श्रीहरि की स्मृति आ जावे यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। एतावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्येन योगेन सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया एतावान जन्म लाभ। बस इतना ही है, क्या है? अंते नारायण स्मृति ही। हरि नाम के साथ प्राण पक्ष उड़ जाए। गोपाल ने कहा प्रभु ये उचित दशा है। महाप्रभु ने कहा तू गोपाल नहीं है, तू मेरा गुरु है। तब से उनका नाम पड़ा गोपाल गुरु। यही सिद्धि है, नाम अनवरत हमारे मुख से निकलता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी 11 श्लोक में मंगलाचरण करके हमें कथा में प्रवेश करा रहे हैं। और कथा के जो वक्ता है वो भी अद्भुत हैं और श्रोता भी अद्भुत है। ये सब विचित्र प्रसंग है, वास्तव में हमारे बुद्धि के अगोचर है। वक्ता कौन है? अभी अभी जो पधारने वाले हैं, बस कियत काल, क्षण काल मात्र उनकी आयु है। कोई वक्ता 3 घंटे तक जीने वाला नहीं था वहां। सुखदेव गोस्वामी विदा हो चुके हैं। परीक्षित महाराज जी ने कह दिया था सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणात्मना। हे प्रभु हम सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गए माने? सिद्ध तो घमंड वाले कहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा सिद्धो हम बलवान सुखी, असुर लोग कहते हैं। पर यहां परीक्षित कहते सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि भवता करुणा आत्मना। हम सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गए मैंने, जो हमें करना था तमोपजातम प्रत्यंतु विप्राह गंगा देवी धर्म चित्त मित्र विषय। हम इनके शरण लेते हैं, हमें कृष्ण कथा सुना और कृष्ण में रति हो जाए। बस हमारे चित्त वृत्ति में मेरे प्रभु मेरे आराध्य देव मेरे रक्षक मेरे पालक आ चुके हैं। यही सिद्धि है। बस हम आप अभी कृपा करिए, हम अभी वाणी को अभी विराम देते हैं। सुखदेव ने कहा ठीक है ठीक है। उसके पश्चात राजा ने उनकी पूजा करी और सुखदेव जी अंतर्हित हो जाते हैं, मुनियों के साथ चले जाते हैं। उसी क्षण दौड़ी दौड़ी उनकी मां उत्तर आती है। परीक्षित महाराज जी की मां विराट नंदिनी उतरा अपने एक लौता पुत्र जो अभी मरणासन्न है, तक्ष के काटने से जिनके प्राण पक्षी रूप अभी उड़ने वाला है, उसके समीप आ जाती है। उत्तरा भी एक विचित्र महिला है। कितना कष्ट उसने नहीं झेला होगा। दो तीन महीना के विवाह के पश्चात विधवा हो गई थी, अधिक से अधिक दो तीन महीना। वीर श्रेष्ठ अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में उनका प्राणांत हो जाता है। सांत्वना देकर श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, परीक्षित गर्भ में रहता है, पति चला गया, अब अश्वत्थामा जो बड़ा दुष्ट है, अपांडवा कर्तुम इदम्, उन्होंने शपथ लिया कि बस अब पूरे संसार को, पूरे धरित्री को हम अपांडव कर देंगे, पांडव नहीं रहेंगे। और जो पांडव का बीज है परीक्षित, उसको भी मार देंगे। अश्वत्थामा ने दो बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, पांडवों पर और ये उत्तरा के गर्भ पर। उसी समय उत्तरा विकलता को प्राप्त होती है, विकल से आकुल भरा कंठ से वो कृष्ण को पुकारती है, पाहि पाहि महाजोगी देव देव जगत पते नान्यत्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। देखिए उत्तरा की क्या विशिष्टता है। कुंती से, द्रौपदी से उत्तरा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? यदा कदा विपत्ति आई है कुंती पर, यदा कदा विपत्ति आई है द्रौपदी पर, इन्होंने किसी ना किसी दूसरे का सहारा ढूंढा है। द्रौपदी प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो भीष्म के पास गई थी मेरी लाज बचाओ, द्रोणाचार्य के पास गई थी मेरी लाज बचाओ, पांच पतियों के पास गई थी मेरी लाज बचाओ, अंततः अपने बल पर भरोसा करके भी वो रही थी, पर नहीं हुआ था। पर यहां पर सब थे, पांच पांडव भी थे, युधिष्ठिर आदि, परंतु उत्तरा किसी के पास नहीं गई। ये विशिष्टता है, यही भारतीय महिलाओं की गरिमा मंडित इतिहास है। विपत्त आए तो वो हरि के शरण में जाती है। बड़ी बड़ी पराक्रमी वीर थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर उनके ससुर लगते हैं ना, सब थे, किसी के पास नहीं गई उत्तरा। सीधे उन्होंने कहा पाही पाही महाबाहो, हे महाबाहो हमारा रक्षा करो। क्यों? उन्होंने कहा यत्र मृत्यु परस्परम, यहां एक दूसरे के मौत का कारण है, किसके पास हम जाएं? सब मौत के गांव में जाने वाले हैं, केवल आप अमृत दे सकते हो, आप हमारे बच्चे की रक्षा करो। तो श्री कृष्ण ने मानो उस समय सोचा कि तुम हमारे पुत्र वधु नहीं हो, अभिमन्यु उनका भागिनेय थे, भागिनेय ना, तो भागिनेय की बहू है, पुत्र वधु के समान है। तो श्री कृष्ण ने सोचा नहीं, आज से हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। इसलिए परीक्षित की रक्षा के हेतु श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, नौ माह तक चक्र और गदा लेकर के परीक्षित की रक्षा करी थी उन्होंने। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तरायण। उत्तरायः गर्भो अयनम यस्य स उत्तरायणः। भीष्म जी प्रतिज्ञा, भीष्म जी चाहे मकर संक्रांति के बाद शरीर त्याग करे, चाहे आषाढ़ के महीने में त्याग करे, क्या फर्क पड़ता है? हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण हुआ भादो कृष्ण चतुर्दशी, हजारों लाखों भक्तों का देहांत होता है। नैते श्रुति जानन पार्थ योगी मुह्यति कश्चन तस्मात सर्वेशु कालेशु योगो युक्तो भवान जुन। योगी चाहे किसी भी हालत में चले जाए, सदैव उनकी स्मृति अखंड बनी रहती, कोई चिंता नहीं। परंतु भीष्म की इच्छा थी सदैव देव भगवान प्रतीक्षता जावादिदं कले बरम हि नोम्यहम्। जब तक ये शरीर हम नहीं छोड़ेंगे तब तक चतुर्भुजधारी आप मेरे सम्मुख रहना, यही उत्तर है। आपके दर्शन करते करते हमारे प्राण पक्षी उड़ जाएंगे। वो श्री कृष्ण, वो उत्तरा जो श्रोता बन रही है, परीक्षित भी देखिएगा, क्या आप ये तर्क आपके मन में नहीं आ रहा है? गर्भ में जिसकी रक्षा हो गई उस सामान्य ब्राह्मण बालक के वचन से श्री कृष्ण रक्षा करने में असमर्थ थे? ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने डंका पिटवा करके कहा, मधुभयात वाती वातो यम सूर्य हस्तपति मधुभयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मधुभयात। मेरे भय से मृत्यु चलती है, अगर मेरी आज्ञा होगी मौत किसी के पास नहीं आ सकती, आने की हिम्मत ही नहीं होगी मौत की। सामान्य ब्राह्मण बालक वो कह देगा? वो प्रश्न तो सब जानते हैं। इतिक्त्वा रोष प्राम्राक्ष, रोष से क्रोध से उसके आंखें लाल लाल हो गए, आंखों से अंगार बरसने लगे। कौशिक्य उपस्पृश्य वाग्वज्र विससर्जः, श्रृंग ने कौशिक नदी का जल स्पर्श किया, आचमन करके वाग्वज्र विससर्जः। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमे हनि, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्षत्रिय होकर ब्राह्मणों का निरादर किया है, राजा होकर के भक्तों को तुमने सुरक्षा नहीं दी है, मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया, ब्राह्मणों का निरादर किया है, आता हम तुम्हें श्राप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंश तुष्म कुलांगारम चोदितो में तत् द्रोहम, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, मेरे वचन की मर्यादा है, अतः आज के सातवें दिन तक्ष के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। पूरी समूचा संसार में प्रकट हो गया, ये बात फैल गई बिजली की तरह। क्या कृष्ण को पता नहीं था? कृष्ण आदेश कर सकते थे? नहीं, ये उनकी विचित्र लीला थी। अपने सखा मित्र बंधु अर्जुन के माध्यम से युग इतिहास रचने के लिए उन्होंने भगवत गीता दे दी। गीता का माध्यम बने अर्जुन। आज अर्जुन के एक गरिमामय उत्तराधिकारी अपना पौत्र परीक्षित को साधन बना करके, माध्यम बना करके वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पूरी दुनिया देख ले, हमारी सामर्थ्य कभी चुकती नहीं है, हम अच्युत हैं, लेकिन हम बाणों का जवाब बाण से देते हैं और वाणी का जवाब वाणी से देते हैं। भीष्म तुम्हारे ऊपर वाण बौछार कर रहा था अर्जुन पर, इसलिए हम अस्त्र लेकर के भागे थे धृतराष्ट्र चरण, और आज वो ब्राह्मण बालक ने अपनी वाणी का त्याग कर है छोड़ दिया वाक्वज्रम, इसीलिए हे परीक्षित हम तुम्हारी रक्षा वाणी से करेंगे, इसीलिए भागवत का प्राकट्य हुआ। इसीलिए भागवतकारों ने कहा, तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भागवत प्रत्यक्ष वाणी अवतार है, श्री कृष्ण की वाणी है। इस वाणी ने परीक्षित की रक्षा कर दी। क्या बिगड़ सकता है ब्रह्मशाप? केवल परीक्षित की रक्षा नहीं हुई, संपूर्ण मानव समाज की रक्षा हुई भागवत के माध्यम से। तेने यो वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरि, इतनी शक्ति कहां से आ गई? तिरोधाय प्रविष्टो यम, उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि श्री कृष्ण अंतरहित होकर के इसमें प्रवेश कर गए, जारा सबर उसको कहीं भेजा नहीं, तिरोधाय प्रविष्टो यम इस ग्रंथ में प्रवेश हो गए भागवत में। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत की विशेषता है, साक्षात श्री हरि। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं मदेक बंधु मद संगीन मद गुरु मन महाधना, ये मेरे महाधन है, ये मेरे इष्ट है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे सहोदर, सब कुछ है यही बस। और वो परीक्षित महाराज वक्ता और उत्तरा श्रोता है, प्रश्न कौन सुन रहे हैं, प्रश्न सुन रहे परीक्षित के सुपुत्र जनमेजय, उनके आचार्य है जैमिनी, जो पूर्व मीमांसक माने जाते हैं, भक्ति का थोड़ा संबंध है। वैशंपायन के मुख से महाभारत श्रवण करने के पश्चात जनमेजय को बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं हुई, उन्होंने पुनः जैमिनी जी से सुना। जैमिनी जी के महाभारत श्रवण के उपरांत परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव मधुरेण समाप्यते, क्षमा कीजिए जनमेजय कहते हैं मधुरेण समाप्यते, मधुरादि मधुर कथा कह करके इसका समापन करो। जैमिनी कहते हैं जनमेजय कितना मधुर हम कहेंगे, तुम्हारे वंश की गरिमा है, जब शुकाचार्य कथा करते थे हम उनके समीप बैठे थे और अत्यंत गोपनीय बातों को मैंने बहुत समीप से देखी है, हम जानते हैं। जब परीक्षित का अंत समय आ गया, उनकी मां दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और महाराज परीक्षित ने क्या कहा, वही गोपनीय तथ्य हम तुम्हें बताते हैं, यही भागवत का सार है। उत्तर आकर के कहती है बेटा थोड़े समय और बच गया, मुझे बताओ तुम अपने गुरु सुखदेव से क्या सुना, उसका सार क्या है, ना तो कहने का अवकाश तुम्हारे पास बहुत अधिक है, ना तो सुनने का अवकाश मेरे पास भी बहुत अधिक है, मुझे केवल इतना ही सार बता दो कि तुमने जो सुना उसका सार क्या है, सारभूत अंश क्या है। उत्तर बड़ी बेहला थी, रो रहे थे। परीक्षित महाराज ने सबसे पहले उनको ढांढस बंधाया, उसने समझाया कि मां ये संसार अनित्य है, मरना मरना भांति है, जो जन्मे मर जाए राम द्वारे, जो मरे फिर बहुल मरना ना हो, मां ये मेरी मृत्यु है, ये महिमा मंडित है, इतने संत यहां विराजमान है, हरि कथा गूंज रही है, कीर्तन गूंज रहा है, साधु स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, ऐसा मंगलमय मुहूर्त है, सबके भाग्य में ऐसा नहीं आता। फिर भी मां अधीर हो जाती है, उसका धीरज बंधा करके परीक्षित कहते हैं मां थोड़े समय में हम तुम्हें सार प्रस्तुत करते हैं। वो सार को परीक्षित महाराज एक प्रयाग ब्राह्मण से लेकर के वहां तक पहुंचाते हैं ब्रजगोपियों के पास। परीक्षित महाराज प्रारंभ करते हैं, अब कथा प्रारंभ होता है। एकदा तीर्थ मूर्ध्यन्य प्रयागे मुनि पुंगवाह माघे प्रातः कृत स्नाता माघे प्रातः कृत स्नाना स्नाता श्री माधव समीपतः। मां एक बार की कथा, प्रयाग में मुनियों की मंडली बैठी थी, उनमें विचार चल रहा था, सब प्रसन्न थे, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। कैसे प्रशंसा कर रहे थे, कृष्णस्य दैतोषीति श्लाघ्यते स्म परस्परम, आप कृष्ण के प्रिय हो, वो कहते आप कृष्ण के प्रिय हो, हम नहीं है, नाहम त्वम त्वम असि कृष्णस्य प्रिय, आप कृष्ण के प्रिय हो, आप कृष्ण के प्रिय हो, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय परम भक्ति के आचार्य श्री नारद जी वहां उपस्थित होते हैं। नारद जी के मन में भी बड़ी जिज्ञासा हो, तो सबके ओर से नारद जी चले देखने के लिए वास्तव में श्री कृष्ण कृपा के पात्र कौन है। जैसे प्रातःकालीन आप लोगों ने सुना है कि भृगु चले थे परीक्षा करने, और नारद जी परीक्षा करने नहीं चल रहे हैं, नारद जी देखने जा रहे हैं वास्तव में नारद जी भक्ति के आचार्य है। यद्यपि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र माने जाते हैं सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, लेकिन नारद जी को श्रेष्ठ माना गया। क्यों माना गया? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ये तपस्या के ज्ञान के अवतार है, परंतु नारद जी भक्ति भक्ति के आचार्य, भक्त्याचार्य, हाँ भक्ति के आचार्य। जितने बड़े बड़े भक्त हुए सबके आचार्य नारद जी हैं। उस दक्ष के कई हजार पुत्रों को उन्होंने बाबा जी बना दिया, त्यागी बना दिया। ध्रुव की रक्षा नारद जी के द्वारा ही संभव है। प्रहलाद जी के परम श्रेष्ठ गुरु श्री नारद जी ही कहलाते हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलेय ध्रुव पदम अपि जातो यत कृपा तो ध्रुवोयम वचन रचनम एकम ब्रह्म शोनम नमामि। जिनके एक वचन से काया जो प्रहलाद उनका उद्धार हो गया, ध्रुव को ध्रुपद मिल गया, ऐसे ब्रह्मपुत्र को हम नमस्कार करते हैं, ये भक्ति महारानी कहती है। तो वो नारद जी जाते हैं परीक्षा करने के लिए, खोजने के लिए कौन कृपा पात्र है। तो सबसे पहले वो जाकर के पहुंचते हैं उस त्रिवेणी संगम स्थान पर, जहां उस माघ स्नान के समय एक धनाढ्य ब्राह्मण आए। किसी किसी स्थान में लिखा हुआ है कि वो ब्राह्मण उस देश का राजा था, चाहे राजा था चाहे कुछ भी था, पर धनाढ्य था, धनवान था। तो वो आए, उनके पास शालिग्राम शिला थी, शालिग्राम की स्थापना करके तो उन्होंने उनकी भारी पूजा की, षोड़श उपचार से उनकी पूजा करी। तो पूजा करने के उपरांत वो ब्राह्मण अपने सपरिवार उनके समक्ष कीर्तन करता है, वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन करता है, और जितने भी भोजन पकवान बनता है सबसे पहले ब्राह्मणों को, वैष्णवों को संखालय में नीति नियम के अनुसार उनको खिलाता है, उनकी सेवा करता है, और अंततः जो भी स्वपस्थ थे, जो भी पशु पक्षी थे, भोजयित्वा ततो दीनान अंत्यजान अपि सादरम अतो सयत यथा न्यायम स्वश्रृगाल खवक्रमेण। एक विशिष्टता है, श्री हरि उत्सव में ब्राह्मण वैष्णव अभ्यागत अतिथि इनको तो भोजन कराना चाहिए, परंतु शास्त्र कहता है जो अंत्य जाति है, जो अछूत माने जाते हैं, जो पशु पक्षी कीट पतंग कुत्ते गीदड़ इनको भी भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इनमें भी श्री कृष्ण विराजमान है, इनमें भी श्री कृष्ण विराजमान। सर्वस्य चाहं प्रतिसन्निविष्टा सब जीवात्मा, सब प्राणियों के हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है। इसलिए वो ब्राह्मण बड़ा समदर्शी था, सबको खिलाया, सबकी संतुष्टि कराई। तो अंततः वो परिवार सबका उचिष्ट, सबके भोजन के पश्चात जो प्रसाद बन जाता है उसी को पाता है। यही है एक गृहस्थ का कर्तव्य, एक सच्चे वर्णाश्रम जो विभाग, एक सच्चे वर्णाश्रमी का यही कर्तव्य है, सबको भोजन पवा करके और वो पाता है। इसी की पुष्टि गीता में हुई है, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्वकल्प सही भुंजते तो अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अपने लिए जो पकाता है खाता है वो पाप खाता है, परंतु दूसरों के लिए जो पकाता है खाता है वो यज्ञ शिष्टा अमृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो अमृतत्व पदवी का अधिकारी हो जाता है। ब्राह्मण ने जब ऐसी क्रिया करी तो नारद मुनि उनके पास आ गए, तो नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई, हाथ जोड़कर कहने लगे, आप ही वास्तव में श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हो। हाँ, हो विप्रेंद्र, भवान विपेंद्र कृष्णस्य महान अनुग्रह भाजनम। हे विपेंद्र, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण कुल तिलक, आप ही वास्तव में श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो, यूं कहकर प्रशंसा करने लगे। देखो भक्तों के लिए कई विशेषता है। एक तो पहली बात, भक्त आपस में परस्पर की प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रशंसा कोई नहीं करता। शास्त्र कहता है जो अपनी प्रशंसा करता है वो मरा हुआ माना जाता है। यदि किसी को मरना है वो अपनी प्रशंसा कर ले, अपनी प्रशंसा और मौत ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। नारद जी जाकर के वहां प्रशंसा करते हैं मुक्त कंठ से, भो विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्र, हे विप्रश्रेष्ठ, आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो। पर प्रशंसा सुनकर के ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होता, ब्राह्मण में प्रसन्नता नहीं आती। हम लोग देखते हैं अपने चरित्र को थोड़ा झांके, टटोले अपने दिल को, उस गुफा में क्या छुपा हुआ है, ये जो गुफा है ना ये अंधकार है, इस यहां पे रोशनी नहीं जाती। अच्छा हुआ चैतन्य महाप्रभु आ गए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौरवोय पुष्पवंत चित्र छंद उत्तम उदम। सूर्य चंद्र की ये शक्ति नहीं है कि भीतर के अंधकार को दूर कर दे, पर चैतन्य नित्यानंद की ये शक्ति है, वो हृदय की गुफा में जो पाप रूपी हाथी बसा हुआ है उसको खींच करके फेंक देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम है चौराग्रगण्य, चोरों का सरदार। सब पूजा में जाते हैं तो टोकरी में 2-4 किलो सेव लेकर के उसमें लाल पंचर का कागज ला कर जाते हैं, बाजा ढोल बजवा करके, हम लेते हैं कृष्ण तुम्हारे लिए, हाँ बहुत बड़ा तोहफा लेके जाते हैं, उपहार लेके जाते हैं। परंतु जो माल खजाना पाप को अपने अंदर रखते हैं, हाँ वो छुपाते हैं, कोई अपने अपना पाप कभी प्रकट नहीं करता, उसको छिपाता है। कृष्ण कहते हैं नहीं हमको वही चाहिए। अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उसने गोपियों की साड़ी चुराई परंतु हमारे चित्त का पाप को चुराया, कोई नहीं चुराएगा प्रभु, श्रेष्ठ है। चोर होते हुए भी वो महिमा खंडित है, उससे उनकी महिमा बढ़ गई है। तो ब्राह्मण प्रशंसा को सहन नहीं कर सका, उसने कहा नहीं नहीं हम प्रशंसा के पात्र नहीं है, हम क्या क्या है, हमारे पास है क्या, किस लिए आप हमारी प्रशंसा करते हो, हमारे में कोई योग्यता नहीं। ब्राह्मण अपनी असमर्थता प्रकट करता है, अहम पराक, हम एक तुच्छ प्राणी है, कोनो श्याम दातुम शक्नोमि, मेरे पास कितना धन है, हम कितना दान कर सकते हैं, बाकियत कितना भी हम दे सकते हैं, वैभवम वर्तते किं मे, कितना हमारे पास धन है, थोड़ा ही तो धन है, और साल में हम एक बार आते हैं प्रयाग में, बस थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करके भंडारा लंगर दे करके चले जाते हैं। जैसे कभी कभी लोग जाते हैं मुंबई से वृंदावन में लंगर भंडारा देने के लिए, एक आध दिन चले गए, बढ़िया कीर्तन भजन किए, भोजन दक्षिणा दिए तो आ गए। हाँ भगवत भजनम होता है, नारद जी कहाँ हमारे में भजन है, मेरे पास धन कितना है, हम कितना दे भी सकते हैं, हम एक तुच्छ प्राणी है, हमसे ये सब नहीं है। परंतु आपको एक जगह में भेजते हैं, आप वहां जाइए, दक्षिण भारत में एक राजा है, वो ईश्वर की कृपा पात्र कृष्ण, आप जिनको ढूंढ रहे हो वो कोई है। उनमें क्या विशेषता है, ये तो एक क्रिया हम तो एक दिन करते हैं परंतु वो क्रिया वो नित्य प्रति करते हैं, रोज रोज उनका अतिथि सेवन होता है, रोज रोज उनकी पूजा अर्चना चलती है, सब कुछ रोज रोज होता है, भंडारा दक्षिणा पूजा कीर्तन उपचार सब प्रतिदिन होता है, आप वहां जाइएगा। अच्छा वहां भी है, तो नारद जी अपनी वीणा उठाकर नारायण गाते हुए वो दक्षिण भारत पहुंच जाते हैं। तो दक्षिण भारत जाकर के पहुंच जाते हैं, वास्तव में जितना उस ब्राह्मण ने कहा था उससे कहीं अधिक नारद जी ने देखा। सचमुच उस राजा की जो राजधानी थी, वो राजधानी के समीप में एक विशाल मंदिर था जहां वरदराज विराजमान थे। वरदराज नहीं, भगवान विष्णु का श्री विग्रह विराजमान थे। और कहा गया है कि सुरालया समूचा देश में कई मंदिर थे, जहां भी जाओ दक्षिण भारत में मंदिर ही मंदिर है, मंदिर मालनीय, मंदिरों की माला है, कहीं भी जाओ आपको मंदिर ही मंदिर मिलेगा। और सब जगह अतिथियों का सत्कार, जय जयकार, बहुत कुछ हो रहा था। नारद जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी का आनंद बहुत बढ़ गया। तो उनके पास जाकर कहते हैं, भो राजन, आप श्री कृष्ण के कृपा पात्र, आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र। देखिए यहां पर एक चीज हम बता देना चाहते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। सनातन गोस्वामी ने जो दिग्दर्शनी टीका लिखी है, दिग्दर्शनी शब्द का अर्थ होता है दिशा निर्देश करने वाले टीका। दिशा निर्देश इसलिए कहा गया, सनातन गोस्वामी ने जो टीका लिखी वो वास्तव में दिशा निर्देश करने वाले नहीं है, वो विस्तार टीका है, और अधिक टीका लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनकी इतनी विनम्रता थी, उन्होंने कहा बस मैंने यत्किंचित निर्देश किया है। देखो यदि शास्त्र में हम एक अक्षर का अर्थ ले लें तो बहुत जगह में हम अर्थ को अनर्थ कर देंगे। दिग्दर्शनी का अर्थ दिशा निर्देश करने वाली टीका नहीं है, टीका तो विस्तार है, परंतु वो उनकी विनम्रता है। वो कह रहे हैं बस इतना ही, थोड़ा सा हमने हिंट्स किया है, थोड़ा सा ही मैंने तो सूचित कर दिया है। तो उस टीका में कहते हैं ये दोनों भक्तों में संबंध को स्थापित करते हैं। बोले जी भज से बड़ भक्त हीन छात, कृष्ण भजने नाही जाते कुलादि विचार, कुलीन पंडित धनिर बड़ अभिमान, दिनेर अधिक दया करन भगवान। मैं ब्राह्मण हूं ये एक घमंड है, मैं धनी हूं ये भी एक घमंड है, मैं रूपवान हूं ये भी घमंड है, मैं विद्यावान हूं ये भी घमंड है, गंधर्व कला से मैं प्रवीण हूं ये भी घमंड है। जब तक ये उपाधियां रहेगी तब तक कृष्ण प्राप्ति नहीं है। तो वो ब्राह्मण तो अच्छा था ही, उसमें कोई शंका नहीं है, धन था, विद्या थी, परिवार बहुत अच्छा था, सब उनके अनुकूल थे, शालिग्राम की सेवा उन्होंने बहुत बढ़िया किया, सबको दान दक्षिणा करी, परंतु वो कहता है हम श्रेष्ठ नहीं है, वो क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जाति के हिसाब से क्षत्रिय ब्राह्मण से निम्न होता है, परंतु ब्राह्मण वहां भेज देता है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व का अहंकार था, जाओ जाओ रामानंद के पास जाओ, वो ही तुम्हें भागवत पढ़ा सकता है। रामानंद जी कायस्थ थे, रामानंद पटनायक, रामानंद राय कायस्थ थे। प्रद्युम्न मिश्र कहता है हाँ भगवान मुझे भागवत सुनने की भारी इच्छा है, आप सुनाओगे? महाप्रभु कहते हैं भागवत कहां, भागवत कहां, मैं भागवत सुनाने वाला केवल रामानंद रहे, उनके पास चले जाओ। प्रद्युम्न मिश्र थोड़ा जाने में हिचकिचा रहा, महाप्रभु जब कह रहे हैं तो चला ही गया। जाकर वो वहां पे अटपटी चीज देखी, उनका धीरज खो गया। रामानंद पटनायक, जगन्नाथ के नाटक के निर्देशक, परम संगीतज्ञ, कला के धुरंधर अभिज्ञ व्यक्ति, दोनों सुंदरी युवती देवदासियों को एकांत वाटिका में श्रृंगार कर रहे थे। कविराज गोस्वामी लिखते हैं उनके अंग अंग की शोभा उनके समक्ष प्रकटमान था, प्रकट हो रही थी, शास्त्र कहता है, महाप्रभु साक्षात कहते हैं, आमी तो सन्यासी प्रकृतिर नाम यदि सुनी दर्शन दूरी रहो, सॉरी आमी तो सन्यासी अपना के विरक्त करी मानी दर्शन दूरी रहो प्रकृतिर नाम यदि सुनी। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में कभी स्त्रियों का नाम नहीं लेते थे। अनुपमा प्रीति रेखा माताओं का नाम होता है, ऐसे कभी नहीं लेते थे। ये नाम लेना भी घातक है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रकृति। यदि कोई गृहस्थ भक्त उनके पास आता था तो उनसे कहते हैं प्रकृति ठीक है, पत्नी का नाम नहीं लेते थे, ये नियम था। तो महाप्रभु कहते हैं आमी तो सन्यासी अपना के विरक्त करी मानी दर्शन दूरी रहू प्रकृति नाम यदि सुनी तब वो विकार पाय मोर तनुमान प्रकृति दर्शन स्थिर हय कारवान। बोले प्रकृति के दर्शन करने से कौन ऐसा व्यक्ति है किसका मन स्थिर हो जाएगा। मात्र राय रामानंदे एक अधिकार, केवल इस मामले में रामानंद राय का भी अधिकार है। सुंदर ऐसा कोई वो वृद्धा नहीं थी देवदासी, सुंदर युवती थी, 16 वर्षीय युवतियां थी वो, अंग अंग में शोभा की छटाएं थी, यौवन का पुष्प पूर्णतया खिला हुआ था। रामानंद उनकी सेवा करते थे दासी अभिमान से, हम तुम्हारी सेविका है, कोई भी कार्य नहीं। महाप्रभु कहते हैं काष्ठ पाषाण के समान रामानंद का शरीर, पुतला स्पर्श करने से विकार होता है पर रामानंद जीवंत पुतली का स्पर्श कर रहे थे, कोई भी कार्य नहीं। जाओ उन्हीं के पास जाओ भागो सुनो, वो तो देख करके घबरा गया, आया उनके पास भेजा भागवत सुनने के लिए। दूसरे दिन महाप्रभु ने कहा जाओ उनके पास, हम नहीं भागवत जानते, कृष्ण कथाएं तुम्हारी रुचि, तुम ही भाग्यवान, जार कृष्ण कथाएं रुचि से ही भाग्यवान, बहुत अच्छा है तुम भाग्यशाली हो, पर उनके पास जाओ। महाप्रभु जो डांट पड़ी वो गए, पर जब उन्होंने देखा उनकी धीरज खो गया। 9 घंटे तक कथा चली, 3 प्रहर, ना वक्ता का होश है ना श्रोता का होश है। सूर्य भुवन भास्कर जब अस्ताचल में चले, सेवक आकर के कहता है प्रभु समय अतिक्रांत है, भोजन के लिए पधारे हैं। प्रद्युम्न मिश्रा आ जाते हैं, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लंबी दंडवत लगाते हैं, प्रभु हमें माफ करिए, हमें क्षमा कीजिए। वास्तव में रामानंद जी रस के आगार हैं, और उन्होंने एक विचित्र बात कही। क्या कहा उन्होंने? कहा कृष्ण कथा के वक्ता हम नहीं है, कृष्ण कथा के वक्ता हम नहीं है, कौन है? वही छलिया है, वही वही महाप्रभु है। मोर जिह्वा वीणा यंत्र तुम्हें सूत्रधारी, तुम्हार मन जे उठे ताहे उचारी। मेरी जिह्वा तो उस वीणा की तार है, पर इस तार में झंकार देने वाला वो चैतन्य है। वही कहता है उनका गर्व हमेशा के लिए समाप्त होता है। तो ये ब्राह्मण तो कृपा का, इसीलिए इस ब्राह्मण को रखा गया यहां पर, ये विशेष विवेचनीय है, विचारणीय है। क्यों ब्राह्मण को रखा गया? कि ब्राह्मण में ये गर्व नहीं था, उन्होंने क्षत्रिय के पास भेजा, नहीं हम कृपा के पात्र नहीं है, वो क्षत्रिय है, इसलिए इस ब्राह्मण को कृपा का पात्र माना गया है। यदि पूजा करता है, अर्चना भी करता है, तो उनके चित्त में घमंड आता है, तो मानो अमृत में जहर मिल गया, वो भक्ति नहीं रही, वो कुछ और बन गया, भक्ति अपने लक्षण से हट गई। तो नारद जी जाते हैं, तो ये सब देखने के पश्चात तो उनसे कहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ, त्वं श्री कृष्ण कृपा पात्रम यस्य ईदृक राज्य वैभवम, हे राजन, इतना राज्य वैभव आपके पास है, वास्तव में आप श्री कृष्ण के कृपा पात्र हो, क्योंकि कृपा के बिना किसी को राज्य वैभव की प्राप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण ने कहा, नराणाम च नराधिपम, नरों में मैं राजा हूं, राजा श्री कृष्ण की शक्ति है। तो नारद जी कहते हैं, त्वं श्री कृष्ण कृपा पात्रम यस्य ईदृक राज्य वैभवम, ऐसा राज्य वैभव जिसको प्राप्त है वो वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा पात्र है। सल्लोक गुण धर्मार्थ ज्ञान भक्ति विरान्वितम, आपके राज्य की प्रजा भी सत्य है, आपका धन भी सत्य है, आपका लोक भी सत्य है, आपका गुण भी सत्य है, आपका धर्म भी सत्य है, आपका ज्ञान भी सत्य है, आपकी भक्ति भी सद्भक्ति है, सब सत्य है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ उनकी सारी क्रियाएं जुड़ी हुई है, इसलिए सत हो गया। सत से जब हम बिछुड़ जाते हैं हम असत कहलाते हैं, पर यही वस्तु जब सत में जुड़ जाती है तो वो सत हो जाती है। हे राजन, आप ही कृपा के पात्र हो। पर राजा भी विनयी था, इतना करने पर भी प्रतिदिन प्रतिदिन वो कर रहा है, प्रतिदिन, इसको कर्मार्पण कहते हैं। जैसे ब्राह्मण ने कर्मार्पण किया, कर्मार्पण करने के पश्चात कहता है, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षम सर्व पापो हरो हरि, हम पापी हैं। वो नहीं कह रहे कि हम पुण्यवान हैं, ये राजा भी कर्मार्पण के बाद ये प्रार्थना करता है, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पापो हरो हरि। नारद जी परम उल्लास से नृत्य करने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कृपा पात्र, आप ही श्री कृष्ण कृपा पात्र। तो राजा तो विनय की खानी ही थे, उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आप कैसे कह सकते हम कृपा पात्र है, हे देवर्षि, अल्पायुषम स्वल्पेश्वर्यम, एक तो हमारी आयु, देखिए ये सब तर्क कैसे है, एक तो हमारी आयु बहुत थोड़ी है, हे देवर्षि अल्पायुषम स्वल्पेश्वर्यम, थोड़ा सा ही धन है, अल्प प्रदम नरम, एक तो मानव है, हम थोड़ा ही तो दे सकते हैं, पूरा नहीं दे सकते, जितना हमारा भंडार में है उससे थोड़ा सा हम काट करके तो दान करते हैं, पूरा कहां दे पाते हैं। और स्वतंत्रम, हम स्वतंत्र भी नहीं है, क्यों बोलते हैं, भारत क्रांतम तापत्रय नियंत्रितम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों से हम त्रस्त है, थोड़ा सा धन है, अल्पायुष है, मानव है, हम क्या कर सकते हैं। हे राजे, हे देवर्षि, आप कृष्णानुग्रह वाक्यम ऐसे कह, आप अविचार करके कहते हैं, वास्तव में आपको विचार नहीं आता, यदि आप विचारज्ञ होते आप कभी हमें ईश्वर के कृपा पात्र नहीं कहते। ये राजा की विनोक्ति थी, हे नारद, आपने विचार में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है, आपका विचार सही नहीं है, हम कृपा पात्र नहीं है, क्यों, आप देवताओं को तो देखिए, उनके पास बहुत है, निष्पाप, वो निष्पाप होते हैं, सात्विक दुख रहित सुखिन सदा, उनके पास बहुत सुख है, क्या नहीं है, सब कुछ है, और उनके उनमें जो जो इंद्र है, अदिति नंदन इंद्र, उनके पास क्या नहीं है, बहुत कुछ है, हय ऊंची सर्वाजस्य गज ऐरावतो महान, ऊंची सर्वा घोड़ा है, ऐरावत हस्ती है, कामधुक गौ कामदुखा गाय है, उपवनम नंदनम च विराजते, नंदन वन जैसे वाटिका है, पारिजाता तयो यत्र वर्तन्ते कामपूरकाः, बोले उनके नंदन वन में अनेक पारिजात के पुष्प है, और एक पारिजात को लेकर के उसे कुछ भी मांगो वो पारिजात पुष्प देने में समर्थ है। एको पारिजात दयो यत्र वर्तन्ते काम पूरा सब काम की पूर्ति करने वाले है। ये सब एकेन पुष्पेण यथा कामं सुसिद्धति, एक पुष्प से सारा काम हो जा सकता है। हमारे पास क्या है आप बधाई मेरी प्रशंसा करते हो, हे नारद आपके विचार में त्रुटि है, अतः आप इंद्र जी के पास जाइए। वास्तव में इंद्र श्री कृष्ण के कृपा पात्र है, वहां जाकर के आप देखिए ना तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। नारद जी वीणा वादन करते हुए हरिनाम लेते हुए वो स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भौम लीला में ये दो भक्तों की बात, तीन भक्तों की, दो भक्तों की बात जो की गई है वो ब्राह्मण और ये राजन। यद्यपि ये श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं परंतु इनमें तारतम्य है। वो ब्राह्मण एक दिन का करता है, ये रोज करते हैं, परंतु इनका जो लक्ष्य है अधिक से अधिक स्वर्ग तक है। क्या वो ब्राह्मण जिसने कहा कि हम कृपा पात्र नहीं है उन्होंने सीधा क्यों नहीं कह दिया हनुमान के पास चले जाओ, सीधा कह सकते थे, लेकिन उनकी बुद्धि वहां तक उनको अनुमति नहीं दे रही। इतने में है उनको मालूम है कि वर्णाश्रम चारवताम पुरुषेण परह कुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। वास्तव में भक्ति नहीं है, ये भक्ति को कहते हैं मिश्रित भक्ति। ये केवल भक्ति नहीं, ये प्राधान्यभूत भक्ति। हमको स्वर्ग सुख चाहिए, फल चाहिए, इसलिए भक्ति को मिलाना पड़ेगा। भक्ति बिना कौन साधन दीते नारे फल, भक्ति सर्व फल दे स्वतंत्र प्रबल। भक्ति में स्वतंत्रता है, भक्ति सकल सुख खानी। इसीलिए ये कर्मकांड करते हुए भी उस फल प्राप्ति के लिए श्री हरि की अर्चना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए कहा गया वर्णाश्रम चारवताम पुरुषेण परह कुमान, यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो आप इसको करो। वो राजा भी वही चाहता है, इसलिए हरि पूजन करते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण जो कहता है वो राजा के पास कितना धन है इससे उनकी मनोवृत्ति पता चल जाती है ना, उसके पास इतना है वो करता है, काश हमारे पास होता हम करते, ये भाव है। इनके पास निष्पक्ष निष्कलंक और अनाविल भक्ति नहीं है, इनमें स्वसुख वासना है, हम भोगेंगे और जो बचेगा हम सेवा भी करेंगे, हम धन भी कमाएंगे और मंदिर को थोड़ा थोड़ा दान करेंगे, ये अच्छी बात है, परंतु ये शुद्ध भक्ति में नहीं है। इसका निर्णय हम कल करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। कायेन वाचा बुद्ध्यात्मनामानुसृत स्वभाव करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हरे कोई प्रश्न है? पांच मिनट साढ़े नौ नहीं हुआ, दो पांच मिनट बचा होगा, हाँ 33 होगा, ठीक है। कोई प्रश्न है? ये बहुत ही सुंदर उपाख्यान है।
चैतन्य देव की कृपा से करके वो, हाँ, तो वहाँ पे
देखिए इसके तीन अर्थ है। चैतन्य शब्द का वास्तविक अर्थ है चित्त अधिष्ठाता देव वासुदेव, इसमें कोई शंका नहीं। चैतन्य का जो अर्थ है बिल्कुल सीधा सा अर्थ घटता है वासुदेव का, इतना तो समझ में आ गया। चैतन्य महाप्रभु का नाम था चैतन्य, उनका नाम भी चैतन्य नहीं था, नाम कभी नाम तो आरोप किया जाता है, उनका नाम था निमाय, उनका नाम रहा विश्वंबर, और उनका नाम वो जो सन्यासी ने रख दिया चैतन्य, और आपके केशव भारत ने रखे कृष्ण चैतन्य, है ना। तो वास्तविक चैतन्य जो है वो है वासुदेव। तो सनातन गोस्वामी के गुरु है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए जब भी कोई बड़ी प्रकांड विद्वान होता है वो एक श्लोक के सहारे ना बहुत कुछ कह देता है, वो श्लोक की रचना एक है पर उसका अर्थ बहुत जगह में लग जाएगा। तो इस टीका में लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु माने श्री चैतन्य महाप्रभु जतिवेश, श्री चैतन्य माने चित्ताधिष्ठाता देव वासुदेव, और चैतन्य की कृपा के जो पात्र है श्री रूप गोस्वामी, यह आया है एक रूप पत्र आगे आया है, उनकी भी थोड़ी सी सानुभूति, परंतु मुख्य ही दो है चैतन्य महाप्रभु का जतिवेश और चित्ताधिष्ठाता वासुदेव। आप देखें कहीं भी श्लोक है, जैसे हम लोग कृष्णदेव भवंतम गाते हैं तो वहां पे रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के लिए लिखा है, वहां सनातन शब्द का अर्थ होता है अपने बड़े भाई ज्येष्ठ भ्रात का सनातन गोस्वामी, अथवा सनातन का अर्थ होता है सनातन पुरुष श्री कृष्ण। तो दोनों में वैसे चैतन्य कही है चित्ताधिष्ठ वासुदेव कही है, उनमें से कोई खास अंतर नहीं है, दोनों हरि है। तो मूल कारण यही है संग्रह। हाँ संग्रह कैसे, जब हम हरि का भजन करते हैं तो दूर दूर की चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। तो जो व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है वो संग्रह भी नहीं कर सकता, कहाँ पे भक्ति में कहाँ लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में क्या है, वायु पुराण में क्या है, मार्कंडेय पुराण में क्या है, मत्स्य पुराण में, ये सब सामान्य बात नहीं है ना। तो जो जिनकी दृष्टि शक्ति हो जाती है, विचार क्षमता हो जाती है ना, उनको सब दिखाई देता है, ये भक्ति की महिमा है। इसीलिए प्रातः काल पे हमने कहा था कि दशमस्य विशुद्धार्थम, हमको नाम जब बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिए। हमारे साधन का जो मुख्य अंग है मन, उन्हीं को जोड़ना पड़ता है, मुख्य अंग है मन। इसलिए मन को इंद्रियों का राजा, ये तत्व दर्शन में आप लोग देखोगे किस प्रकार मन की क्रियाएं हैं, मन की क्रियाएं जो है कैसे संकल्प विकल्प है, विकल्प कैसे होता है, उनके विचित्र क्रियाएं है, विशेष कल्पना विकल्प। तो मन को लगाएंगे सब सबके लिए है ध्रुव महाराज जी, कोई व्यक्ति मन को, इसलिए अम्बरीश महाराज जी के केस में सबसे पहले लिखा हुआ है सबे ही मना कृष्ण पदार्थ है, और कोई कृष्ण ठीक है। श्री राधे हरे कृष्ण, श्री बृहद भागवत प्रथम जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, समस्त सूत वर्ग की जय, गौर प्रेमानंदे हरे।